ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने दो मुख्य बातें बताई है। पहली बात, बच्चे मधुबन में दौड़े दौड़े क्यों आते हैं, क्यों आते हैं मधुबन में, कैसा मौसम है फिर भी देखो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अभी भी कितने आ रहे हैं इस समय भी। आज से बट्टी है तो दिल्ली के भाई बहने आए हैं, सवेरे सवेरे ट्रेन आती है तो अभी पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम भी इस समय कैसा है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे दौड़े दौड़े क्यों आते हैं, क्योंकि ये सागर का कंठा है तो सागर के कंठे पर बादल आते हैं। किस लिए आते हैं, भरने के लिए। फिर सागर से जल भर करके फिर जाकर के कलराठी जमीन, जहां बंजर जमीन है, सूखी जमीन है, वहां जाकर के बरसते हैं। तो बच्चे भी यहां आते हैं ज्ञान सागर के पास और यहां से खूब ज्ञान रत्न भर के जाते हैं। तीन दिन या चार दिन बट्टी चलती है तो सब महारथियों से कितने ज्ञान रत्न उनको मिलते हैं। योग करते हैं, दुनिया के वातावरण से बिल्कुल दूर है, आवाजों से दूर है, तो यहाँ शक्ति भरते हैं और बादल बन करके फिर जाके बरसते हैं या भरते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है। लेकिन फिर दूसरी बात बाबा ने कही है कि कौन बच्चे सचमुच बादल बन के बरसेंगे, उसके लिए क्या गुण चाहिए। सबसे पहले पहला गुण तो ये चाहिए, निश्चय। सेवा तब कर सकेंगे जब निश्चय हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। फिर निश्चय के साथ फिर नशा भी हो, रूहानी नशा हो, क्योंकि उसी रूहानी नशे से दूसरों को सुनाएंगे। अगर निश्चय ही नहीं है, वो रूहानी नशा ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे सुनाएंगे। और उसके साथ साथ पूरा देही अभिमानी हो। अगर खुद ही देह अभिमान में है और भले वो सेवा भी करेगा, लेकिन वो बादल ऐसा होगा, हाँ कैसा बादल होगा, या तो खाली बादल होगा, या तो आजकल एसिड बादल भी होते हैं, वो जो बरसते हैं तो और ही नुकसान करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो डिससर्विस भी करेंगे। तो अपने आप को देखना है, मैं कैसा बादल हूँ। मधुबन आता हूँ, अपने आप को यहाँ भरपूर करता हूँ और फिर बरसता भी हूँ या नहीं, या बस ऐसे ही वापस चला जाता हूँ। तो आज की मुरली है सेवा सेवा सेवा। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने कैसे सेवा करनी है, क्योंकि समय कम है। फिर बाबा समय की भी चेतावनी देते हैं, इस थोड़े समय में सबको भगवान का संदेश देना है, बाप का परिचय देना है। तो जो हम बच्चों को मिला है हमको सबको बांटना है। तो आज की मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 11/8/2026 है। मीठे बच्चे, बाप दादा से याद प्यार लेनी है। रोज बाबा हमें याद प्यार देते हैं, तो बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो क्या करो, तो सर्विसेबल बनो, तब वो याद प्यार सचमुच महसूस करेंगे बाबा की। बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करेंगे। तो ज्ञान के बादल बनकर यहां से जाओ, फिर वर्षा करो, यहां करके बाबा से सच्चा याद प्यार लो और अपने आप को भरो। तो बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है। कई बार होता है ना कि बादल तो आते हैं लेकिन वो ऐसी हवा चलती है जो वो बादल उड़ के चले जाते हैं, बरसते ही नहीं है। लगता कि अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, लेकिन ऐसी हवा चलती है तो बादलों को भी उड़ा के ले जाती है। तो कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है, कौन सा नशा होगा? वो उल्टा ही नशा होगा ना। तो कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर है, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया, नशा तो है लेकिन उल्टा नशा है, दे अभिमान का नशा, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, वो बरसेंगे ही नहीं। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? अब हमें, मैं कौन सा बादल हूं, हर एक अपने आप को देखे और पूछे। और फिर अगर खाली बादल हूं, बरसने वाला नहीं हूं, तो फिर बाबा क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चे आते हैं फिर जाके डिसर्विस करते हैं, तो और ही बाबा के बच्चे कहाँ कहलाएंगे। तो ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? तो ये सारी बादल और सागर की कहानी है। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, बाबा के बच्चे बहुत आए होंगे और धीरे धीरे बच्चे गए, तो बाकी थोड़े से बच्चे बैठे होंगे क्लास में। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़े बादल बचे, बाकी तो बादल भर करके गए बरसने के लिए। तो बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहां भी ठंडे हो जाते हैं, यहां भी ठंडे हो जाते हैं, बरसते ही नहीं है। बादल तो उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हो, या आए बाबा के पास, खूब भरे अपने अंदर, भरपूर किया और फिर जाकर के बरसे हो औरों पर, जाकर वर्षा बरसाते हैं, उनको ही कहेंगे सच्चे बादल। अगर कोई बरसात नहीं करते हैं तो उनको बादल थोड़े कहेंगे, बादल ही नहीं कहेंगे तो खाली बादल है, ऐसे ही है, वो हवा आई उड़ गया। तो अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। अब ये है ज्ञान बादल, सब बादल बैठे ना यहाँ सागर के कंठे पर, ये है ज्ञान बादल, वो है पानी के बादल। अभी तो देखो बरस ही रहा है, सारी रात बूंद 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 बरस ही रही है, तो कितने बादल है आकाश में। और नीचे जाओ शांतिवन में तो कुछ नहीं है, जब उनको कहते हैं यहाँ बहुत बारिश है, कहते अच्छा और नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कितनी बारिश है। तो ये भी देखो मधुबन, वैसे सागर का कंठा, तो बादल खूब आते हैं यहाँ, बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है पानी के बादल, ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, बच्चे भी मधुबन में कब आते हैं, जब सीजन होती है। सारा साल तो सीजन नहीं होती थी, बरसात में तो बच्चे आते ही नहीं थे, तो क्योंकि बारिश बहुत होती थी, रहने की जगह भी नहीं, इतने साधन भी नहीं, तो फिर नहीं आते थे। अप्रैल में जून में बच्चे बहुत आते थे, बहुत ठंडी होती थी तो भी कहाँ आते थे। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं जब सीजन होती है तब ज्ञान के बादल आते हैं, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, यहाँ से गए इतने ज्ञान रत्न बरसते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बहुत जोर से बरसते हैं। तो बादलों का काम ही है बरसना, और बरसना और बरस करके क्या करना, और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना, ये बादलों का काम है। हाँ, ये बाबा की भाषा है, कौन से बादल कैसे रिफ्रेश करना है, कैसे बरसना है, ये बाबा के बच्चे ही समझे। जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिपकर भी नहीं बैठते, पता चल जाता है उनका कि ये बरसने वाले बादल है। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, बाबा कहे तब जाएं वो नहीं, उनको डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसने वाले बादल है ना, ज्ञान देने वाले बादल है, तो वो ऐसे नहीं बैठ जाएंगे, वो जरूर बरसेंगे। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल, बादल है पानी का बादल तो बरसेगा, ज्ञान का बादल है तो ज्ञान बरसेगा। आते ही हैं भरकर बरसने के लिए, जहां देखे कलराठी जमीन है, बंजर जमीन है, तो जाकर सब्ज करना चाहिए, हरा भरा करना चाहिए, बारिश पड़ेगी तो सब्ज हो जाती है ना, वो जमीन हरी भरी हो जाती है। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, ये महारथी बच्चे समझ सकते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं, बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अब सर्विसेबल ही नहीं है तो याद प्यार भी कैसे स्वीकार करेंगे। सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं, मुख्य बात ही ये है। कौन सी मुख्य बात समझानी है सर प्रदर्शनी में, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि साकार श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधेरे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, समझते हमको बहुत ज्ञान है, बहुत धन है, बहुत नाम मान शान है, तो भपके वाले समझते अपने आप को। परंतु बाबा उनको क्या कहते हैं, बाबा की बुद्धि में, बाबा की नजरों में वो क्या है, पत्थर बुद्धि, क्योंकि ज्ञान तो नहीं है ना, देह अभिमान में है, तो जो देह अभिमान में होगा वो तो पत्थर बुद्धि है। तो दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, सबका मुझे उद्धार करना है। वो भी रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। सत्युग से लेकर फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं है। कभी जो भगवान हमें ज्ञान देते हैं वो फिर सत्युग में आत्माएं जाएगी, सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा, ये किसको पता नहीं है। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वो तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वो बैठ राजयोग सिखलाते हैं। अब राजयोग सिखलाना आपका मतलब क्या है, राजाई के लिए योग। राजयोग उसको ही कहेंगे जिस योग से राजाई मिले। तो बाबा कहते हैं वो बैठ राजयोग सिखलाते हैं पतित पावन बाप, तो जरूर राजाई के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। राजयोग से राजाई मिलती है तो वो राजाई के लिए तो नई दुनिया चाहिए। इस कलयुगी दुनिया में तो राजाई है ही नहीं, नई दुनिया चाहिए। तो बाप ही आकर के ये भी आकर राजयोग सिखलाएंगे, और तो कोई नहीं सिखला सकता राजयोग। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, जिनों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, वही फिर समझेंगे। कल्प पहले जिनको समझाया था वही समझेंगे। ये लड़ाई कोई वो नहीं है, वो दुनिया में जो लड़ाइयां होती है ये लड़ाई तुम्हारी वो नहीं है, जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी, ऐसी लड़ाइयां हुई है ना। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं, भगवान उवाच। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं और संग तोड़ बुद्धि का योग एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है, बुद्धि योग तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है, तो वापस जाना है तो क्या करना होगा। तो बाबा कहते हैं घर को भी याद करना है जहाँ जाना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक, हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। हाँ, बाबा की मुरली क्या है, ये अमर कथा है अमर लोक में जाने के लिए। अमर कथा सुन रहे हैं, देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। वहां तो एक भी यहाँ कलयुग में एक भी हो न सके। बाबा कहते हैं देवताओं को दैवी गुणों वाला मनुष्य कहेंगे, पर यहाँ तो किसमें वो दैवी गुण है ही नहीं, तो यहाँ तो एक भी देवता हो न सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। देवता बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है ये भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दैवी गुणों में सबसे ऊपर है पवित्रता। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है मुख्य पहला गुण। जहां तक तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही है ना, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं, और जो पावन थे वही पतित बनते हैं, फिर अपने ही पावन पूज्य स्वरूपों की पूजा करते हैं, माथा झुकाते हैं। तो जो पावन थे वही पतित बनते हैं, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुराने शरीर को भी भूलना है। सर्विस भी बहुत करनी है पर साथ साथ पुराने शरीर को भी भूलना है, घर को भी याद करना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। कोई भी चीज नष्ट करने में देरी नहीं लगती है, बनाने में देरी लगती है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते तो हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना उनको। भगवानो वाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। ये ज्ञान उनको तब बुद्धि में बैठे जब पहले थोड़ा समझे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो है शिव बाबा। कौन है बेहद का बाप? वो है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं, स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, है ना। सब आत्मा भी तो आत्मा भाई भाई है ना, पर सतयुग में। लेकिन सब ब्रदर्स सब भाई सुखी थे। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नर्कवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, सब आत्माएं नर्कवासी है, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आत्माएं होगी, शरीर भी उनको साथ में होगा ना। तो सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना, तब तो कहेंगे नर्कवासी है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत किसमें है? आत्म अभिमानी बनने में। मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब हो, ये अवस्था आत्म अभिमानी पूरा रहे, ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, है ना। कई छोटे बच्चे आप देखेंगे उनको बंदूक चाहिए हर बात में, उनको और कोई खिलौने नहीं पसंद, बस बंदूक बंदूक बंदूक। भले वो ये प्लास्टिक की बंदूक हो लेकिन उनको और खिलौने नहीं चाहिए, बंदूक दो तो खुश हो जाते हैं। तो क्यों बंदूक उनको चाहिए? हो सकता है पूर्व जन्म में वो मिलिट्री में होगा वो आत्मा मिलिट्री में होगी तो बंदूक से बहुत प्यार है, तो इसीलिए इस जन्म में बच्चा है लेकिन उसको बंदूक चाहिए। तो बाबा कहते वो संस्कार ले जाते अगले जन्म के लिए। आए थे हमारे पास एक युगल आया था, उसका बेटा था 20-22 साल का। तो हमको कहते हैं कि बहन जी इसको बोलो कि मिलिट्री में नहीं जाए, पर इसको बहुत जिद है मैं मिलिट्री में जाऊंगा मिलिट्री में जाऊंगा मिलिट्री में जाऊं। तो एक ही बेटा है हमारा, इसलिए हम कहते नहीं बेटा तुम बिजनेस करो, तुम मिलिट्री में नहीं जाओ। लेकिन वो धुन लगा के बैठा है मुझे तो मिलिट्री में ही जाना है। तो दीदी इनको समझाओ। अब हम क्या समझाएं, वो संस्कार ही उनके होंगे मिलिट्री में जाने के, तो माँ बाप भी क्या करेंगे और भी क्या करेंगे, आत्मा ही तो वो संस्कार लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है, अभी हम कौन से संस्कार धारण कर रहे हैं? जो बाप के संस्कार है वो हम बच्चे धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है। कौन से है बाबा के संस्कार? ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, ये जो गुण है बाबा के, ये संस्कार ही तो है बाबा के। तो बाबा कहते हैं अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। हाँ, क्या संस्कार है? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, वही आकर के पावन बनाएंगे। जैसे जिसके संस्कार होंगे उसको औरों को भी वही बनाएगा, तो बाबा में जो संस्कार है वो औरों बच्चों को देते हैं, वही आकर पावन बनाएंगे। तो बाप कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो ना, फिर नहीं तो बाबा सावधानी भी देते हैं, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं सबसे सहज रास्ता कौन सा है? मन मना भव। कहते हैं मन मना भव, अब ये अक्षर भी तो गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव तो कहा भगवान ने, मन को मेरे में लगाओ, परंतु बाबा कहते इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। बस यही भगवान हम बच्चों को कहते हैं। तो सरल भाषा में बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग तो कॉमन अक्षर है, गीता में भी है योग है, एक एक चैप्टर योग का ही चैप्टर है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, हाँ एक एक चैप्टर योग से संबंधित है। लेकिन बाबा कहते हैं योग को तो कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो फिर क्या कहते हैं? जब तुम ये ज्ञान औरों को समझाते हो तो लोग क्या कहते हैं? ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा लेना ही नहीं है। अब जो कहेंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है, उनको वो निश्चय बैठता नहीं, समझते नहीं, तो बाबा कहते हैं उनको तो वर्षा लेना ही नहीं है, इसलिए वो समझेंगे भी नहीं, उनको तो वर्षा लेना ही नहीं है। तो पहले तो जब ये समझे कि ये बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और वो हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। एकदम नया नया आकर के यहाँ बैठे मुरली में और वो निश्चय हो जाए कि ये भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कहते असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं, नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है, जरा भी बुद्धि में नहीं बैठता है। इतने ढेर बाबा कहते यहाँ आते हैं लेकिन जरा भी समझते नहीं है, ये भी नहीं समझते हैं कि इतने ढेर बीकेज है, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो जरूर इनों को बाप का वर्षा मिला होगा, तभी तो ये आते हैं पिता के पास। वो ये फैमिली हो गई ना, फैमिली हो गई ना, नाम ही लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या लिखते हैं सेंटरों पर या यहाँ भी हम, क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है? नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। हाँ, तो बाबा कहते तो फैमिली हुई ना, कुमार कुमारी माना क्या? परिवार, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, हाँ लाखों है इस फैमिली में, परिवार में कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की भी बुद्धि में बैठती नहीं। कोई पूछे आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, इस संस्था का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उनको क्या बोलो, उनको बोलो देखो आपने बाहर बोर्ड पढ़ा, बाहर जो अंदर आने से पहले बाहर का बोर्ड पढ़ा, बाहर बोर्ड पढ़ा उस पर क्या लिखा हुआ है, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो फैमिली हो गई, तो कहाँ आए हो, फैमिली में परिवार में आए हो। दादी का वर्षा मिलता है यहाँ, इस फैमिली में कौन कौन है, ग्रैंडफादर है, फादर है और उनके बच्चे, बस। तो दादी का वर्षा मिलता है, हर एक को हकदा हक है दादी का वर्षा लेने का। प्रजा पिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वो क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना, यहाँ आते ना तो हम उनको क्या कहते हैं, आप कहाँ आए हो, ये ईश्वरीय परिवार भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, ये हॉस्पिटल भी है, ये बहुत कुछ है, खाली एक चीज नहीं है। तो ये सब है, सब रूहानी है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बच्चे बच्चियां और दादा, हाँ ब्रह्मा बाबा भी है, शिव भी है, वो है रचयिता, निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे। अब निराकार ग्रैंडफादर तो उसको वर्षा देना है अपने पोतरों को, तो कैसे देगा, बीच में बाप चाहिए ना। तो निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, नए व्यक्ति को बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं, फिर और क्या है, ये घर भी है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, और बाबा और क्या कहते हैं, बाबा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। क्या क्या है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। तो गीत में भी है ना, गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आप पर बलिहार जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे। यह भक्ति मार्ग में कहा भगवान को, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगे, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ ही जाएंगे, भगवान के बनेंगे तो जरूर भगवान के साथ ही जाएंगे ना घर। तो बाबा कौन सा मिसाल देते हैं, भगवान के बने हैं तो भगवान के साथ ही घर जाएंगे। तो उसके लिए बाबा मिसाल क्या देते हैं, जैसे सगाई करते हैं ना, शादी होती है मान लो, तो अभी शादी हुई तो सगाई करते हैं, तो फिर सजनी साजन, फिर साजन सजनी को अपने घर ले जाता है ना। शादी के बाद क्या होता है, ऐसे थोड़ी मायके चली जाती है, शादी हुई माना अभी वो पति उसको अपने घर ले जाएगा, ससुराल चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना उस सजनी को। ये शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे, जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है, कितनी छोटी छोटी कुमारियां भी खूब सर्विस कर रही है, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। दिखाते ना कैसे भीष्म पिता के आगे वो शिखंडी आ गई, तो शिखंडी पूर्व जन्म में फीमेल थी, ऐसे बताते हैं, तो फीमेल थी, तो भीष्म पिता ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी नारी के आगे नहीं बाण चलाऊंगा। तो कैसे युक्ति रची श्री कृष्ण ने, बताते ना कि शिखंडी को आगे किया, और शिखंडी को आगे किया, मारा तो अर्जुन ने तीर ये उनको भीष्म पिता को, लेकिन भीष्म पिता में तो शिखंडी को ही देख रहा था। इस जन्म में तो पुरुष था पर पूर्व जन्म में वो स्त्री था, तो पूर्व जन्म ही उसको दिखाई दे रहा था उसका शिखंडी का, तो इसीलिए फिर भीष्म पिता ने फिर उनको बाण नहीं मारा। और बाण मात खाता गया और फिर देखो बाणों की शैया पर उनको लेटना पड़ा। तो बाबा कहते हैं तो छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है, उन्हों कोई बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। जो अच्छे होते हैं कुश्ती लड़ने वाले और एक कोई अच्छा कुश्ती वाला है तो कहेंगे हम इनके साथ लड़ेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। ये जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये बहुत नारा था, नेहरू जी का नारा था, आराम हराम है। अभी भारत स्वतंत्र हुआ है, अब इसको बहुत आगे बढ़ाना है, तो आराम हराम है। तो आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सुना, सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, फिर बाबा सर्विस की बात कर रहे हैं, तो उन दिनों में अभी प्रदर्शनियां नई नई बनी थी, तो बाबा को भी शौक था कि बड़े बड़े सेंटर्स को ये प्रदर्शनियां भेजे। तो दिल्ली में हमारा खास का ये कृष्णा नगर सेंटर था, वहां पर बहुत सारे चित्रकार को बिठाया था हमारे आत्म प्रकाश भाई ने, और कैसे प्रदर्शनियां उसमें पेंट होती थी। आजकल तो बड़ा सहज है, फ्लैक्स पर बना लेते हैं, लेकिन उस समय वो पेंट करते थे और फिर जाकर फिर बाबा को भेजते थे, फिर बाबा सेंटरों पर भेजते थे। तो वही बाबा कहते हैं आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब आएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो। अभी है ना रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है ज्ञान सरोवर में, तो साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे बाबा से योग नहीं प्यार नहीं तो वो बच्चा कैसे। तो बाबा कहते वो जैसे खाली बादल है, प्यार नहीं, निश्चय नहीं, देही अभिमानी नहीं, ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं है, तो खाली बादल हुआ ना, तो वो तो जैसे खाली बादल है, वो क्या करेंगे। ये तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हरे खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, ये ज्ञान हमने कहाँ तक अपने जीवन में धारण किया है, कहाँ तक इसको पूरा समझा है। बाबा कहते हरेक समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके कहाँ तक दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं, बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम का। भरा हुआ लगेगा बस अभी बरसेगा और बादल चला गया तो बरसा ही नहीं, तो बादल किस काम का। तो बाबा कहते हैं अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए, फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो क्या होगा। हाँ मैं तो बहुत ज्ञान जानता हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, तो ये फालतू नशा नहीं चाहिए। बाबा कहते अगर बादल हो तो फिर बरसो ना, तो फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो। अब उस समय सेंटर्स भी तो सब किराए के थे, कोई किसी भी सेंटर पर कोई बड़ा हॉल तो था नहीं, तो फिर हम किराए पर हॉल लेते थे प्रोग्राम करने के लिए या फिर और कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो हॉल लेते थे। तो बाबा कहते गवर्नमेंट को कहो कि हमको हॉल चाहिए, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। अभी तो देखो रिट्रीट सेंटर्स पर कितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम बन चुके हैं, बाहर के हॉल की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे, ऊंच पद पा न सके, पद भी वही पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर, अब बड़ों बड़ों को क्या लिखो कि इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है, पढ़ाई से ही पद पाया है लक्ष्मी नारायण ने भी। अगले जन्म में राजयोग सीखे, यानी पूर्व जन्म में वे राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स समझते हैं ना, हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज तो इस दुनिया के लिए है और ये नॉलेज इस दुनिया के लिए नहीं है। ये जो नॉलेज ज्ञान बाबा हमको देते हैं ये इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम तो पढ़ते हो भविष्य इस 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए, वो पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। जो भी डिग्री लेंगे इस जन्म में उनको नौकरी मिलेगी या जो भी बड़ा पद मिलेगा तो इस जन्म के सुख के लिए, तो वो भी पढ़ना है, बाबा मना नहीं करते। और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। शिक्षा सीखो फिर सुनाओ दूसरों को, डरने की तो बात ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? हाँ डरते हैं कई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने में भी, समझते पता नहीं सब छोड़ देना पड़ेगा इसलिए डर लगता है उनको। बाबा कहते डरने की तो बात ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। अब बोलो चित्र लेकर जाकर क्या समझाओ, बोलो। नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, डरो नहीं, ये नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते हैं, खड़े नहीं होते माना सेवा नहीं करते हैं। नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है, घोटाला कर देती है माया। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है परंतु नशा नहीं चढ़ता है कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, बड़े हैं, तो घुटका क्यों खाना चाहिए? आप तो अपने पांव पर हो तो घुटका क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को देख के वंडर लगता है, क्या नशा ही नहीं चढ़ता है बच्चों को, नशा ही नहीं चढ़ता है। इसीलिए बाबा फिर उनको क्या कहते हैं जो सेवा नहीं करते, तो बाबा उनको क्या कहते हैं, रजो बुद्धि है, तमो बुद्धि नहीं कहा, रजो बुद्धि है। चांस तो बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का फिर घमंड बहुत है, बहुत अच्छा ज्ञान सुना भी सकते हैं लेकिन घमंड बहुत है, परंतु डिस सर्विस बहुत करते हैं, अब घमंड है तो थोड़ा अहंकार से सुनाएगा, अभिमान से सुनाएगा, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा और अगर उसको जवाब नहीं आया देने तो गुस्सा भी कर लेगा, तो अहंकार है गुस्सा है तो वो क्या सर्विस करेगा, वो तो डिससर्विस ही करेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु डिससर्विस भी बहुत करते हैं, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। क्यों बाबा ऐसे कहते, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि बाबा के पास समाचार आते होंगे कई सेंटरों के कि बाबा ये तो धमचक्कर मचाता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता, कहता मैं समझाऊं लेकिन सब उल्टा समझता समझाता है, लोग बहुत नाराज होते हैं पर ये सुनता नहीं है। तो बाबा को लिखते थे तो बाबा कहते बाबा जाने और बच्चे जाने कैसे कोई बच्चे डिससर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो कितना अच्छा चल रहा है और अभी अभी देखो ग्रहचारी बैठ गई और गिर पड़ते हैं। बाबा के सामने तो सब समाचार आते थे, ग्रहचारी बैठी तो गिर पड़े। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है, हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। क्या पान का बीड़ा उठाना माना प्रतिज्ञा करना, क्या कि हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। तो बाबा नशा तो वो चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में नंबर वार चढ़ता है ये नशा। अब हर एक अपने में देखे मेरे अंदर कितना नशा है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। अभी ये 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान ये जो चल रहा है ये भी बहुत सेवा कर रहा है, कितनों को नशा मुक्त बनाया। तो बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। अब दोनों में कितना अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, एक है ज्ञान का घमंड और दूसरा है रूहानी नशा। तो ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। करना और कहना, हाँ कथनी करनी एक समान बनानी है, तो करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है, जो तुम कहते हो पहले खुद करो फिर दूसरों को कहो। तो सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है, कहना तो सहज होता है करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, अब भाषण तो बहुत अच्छा किया, फिर जाकर के गुस्सा किया, तो लोग कहेंगे ना अरे भाषण तो कितना बढ़िया किया, पर ये तो गुस्सा करता है। तो वो क्या हुआ, अमृत के बीच जहर डाल दिया। तो बाबा कहते ऐसे जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कथनी करनी एक समान करने वाले, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जिसको दूसरे शब्दों में कई बार कहते हैं ना, कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। कैंची तो दो को एक होगा उसको दो पीस कर देगी, और सुई धागा दो को एक करेगा। तो दो को एक करने वाला बनो। अनेकता में एकता लाना है, बिगड़ी को बनाना है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके लिए जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे, कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना है। आत्मा को असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। विस्मृत होना, बाबा कहते ये भी पाप के खाते में जमा होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज से भट्टी शुरू हो रही है दिल्ली के भाई बहन।